समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओ, परिक्रमा के इस अंक में मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून अतहर। Athar, in fact, every morning with my cup of tea, I usually go through the newspaper. And today when I was going through it, reading it, I went through the weather report today and got to know that IMD has issued a heat wave warning for multiple states across the country, forecasting an above normal rise in temperature. Of course, barring the northeastern region where we'll be having rainfall. Mm-hmm. The IMD has also predicted that this year around 10 to 20 days of heat wave conditions are expected across the country, as opposed to the normal 4 to 5 days in previous years. So usually heat wave conditions hit India around May and June every year during summers, but this time it has started a little early and it has already come into our lives in May in April. So, India is facing a shift in its general weather pattern. The recent rise in the average global temperature is more pronounced and is primarily due to human activities. Nearly every element of our lives is impacted by the climate, including our food supplies, transportation systems, clothing choices, and of course, vacation destinations. It significantly affects our future, our health, and our means of subsistence.
तो आने वाले भविष्य की तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। जो आपने कंडीशन बताई, वेदर कंडीशन बताई हैं, तो आने वाले समय में ये कंडीशन और खराब होने की संभावना है, तो अभी भी जागरूक होने का समय है।
Yes, undoubtedly, climate change is one of the biggest challenges that humanity is facing today. But of course, it's never too late. If we work together at individual, community and organizational levels, we can reduce or reverse the phenomenon of frequent extreme weather. Let's put our campaigns into actions more vigorously. Let us now give you all that's making news at this hour.
Bilkul Anuja.
The headlines. Filing of nominations for second phase of Lok Sabha elections to end this evening.
भारतीय जनता पार्टी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू डेडिकेट्स इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी टू द नेशन एट आईआईटी बॉम्बे।
सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, गुजरात टाइटंस टू फेस पंजाब किंग्स इन अहमदाबाद दिस इवनिंग। And Athar, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about International Mine Awareness Day.
बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण आज का हमारा शीर्षक है, टॉपिक जो भी कहें, उन मजदूरों के लिए विशेषकर जो कि अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारी सुविधा के सामान मुहैया कराने में हर संभव मदद करते हैं, चाहे वो सुरंगों की बात करें, चाहे खान की बात करें, जो कोयला है या फिर दूसरे खनिज पदार्थ की जो खाने होती हैं, उनमें काम करना बड़ा आसान नहीं होता है। अनुजा, लोगों को बारूदी सुरंगों से होने वाले खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल 4 अप्रैल यानी आज के दिन इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूक किया जाता है। पूरी दुनिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि खनिज पदार्थों जैसी कई चीजें खनन के माध्यम से ही अनुजा प्राप्त होती हैं।
राइट अथर, द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th of April एवरी ईयर टू रेज पब्लिक अटेंशन टुवर्ड्स माइन एक्शन एक्टिविटीज, द लैंड माइन्स, इट्स थ्रेट्स टू द सेफ्टी ऑफ मैनकाइंड एंड हाउ टू वर्क टुवर्ड्स इट्स एलिमिनेशन। माइनिंग मटेरियल्स पोज अ मेजर थ्रेट टू द हेल्थ, लाइव्स एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। And United Nations supported platforms like every year on this day organize and carry out initiatives to reduce the threat caused by mines and explosives. As per the United Nations, on an average, one person is killed or injured by such explosive devices every hour. It also has an impact on children, and many children are among the victims. The use of improvised explosive devices has expanded, terrorizing civilians and threatening humanitarian actors and United Nations missions and, of course, personnel. And if we talk about the background of this, in 2005, the General Assembly declared the 4th of April of each year to be observed as the National Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. It called for continued efforts by states, with the assistance of the United Nations and its relevant organizations, to foster the establishment and development of national mine action capacities in countries where mines and explosive remnants of war constitute a serious threat to the safety, to the health, and also to the lives of the civilian population, or an impediment to social and economic development at the national and local levels. For over 20 years, the work of the United Nations Mine Action Service has been driven by the needs of affected people and has been tailored to the threat of explosive hazards faced by civilians, peacekeepers, and humanitarians. Of course, this Mine Action Service of the United Nations works to save lives, to facilitate deployment of UN missions and the delivery of humanitarian assistance to protect the civilians, to support the voluntary return of the internally displaced and the refugees, to enable humanitarian and recovery activities, and to also advocate for international humanitarian and human rights law.
बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुजा. अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 यानी इस वर्ष की अगर थीम की हम बात करें तो इस बार की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस, यानी जीवन रक्षा शांति की स्थापना है. ये विषय मानव जीवन की सुरक्षा और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में खदाई कार्रवाई के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है, उसके महत्व को बताता है. रक्षा जीवन खदान निकासी प्रयासों के तत्काल और ठोस प्रभाव पर जोर देता है, जो बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के घातक खतरे को सीधे हटाकर हमारे जीवन को बचाता है. खदानों और गैर विस्फोटित आयुधों को साफ करके समुदाय भूमि तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खेती, बुनियादी ढांचे के विकास और विस्थापित आबादी की वापसी जैसी आवश्यक गतिविधियां सक्षम हो सकेंगी. और इसके अलावा बिल्डिंग पीस संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता और सुलह को बढ़ावा देने में खदान कार्रवाई के व्यापक महत्व पर प्रकाश डालता है. बारूदी सुरंगों को हटाने से न केवल हताहतों का जोखिम कम होता है, यानी चोट लगने के जोखिम कम होता है, जान जाने का जोखिम कम होता है, बल्कि संघर्ष के बाद की जो वसूली है, सुलह है और सतत विकास है, उसमें भी आसानी होती है. अनुजा, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे के दिन यानी आज के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इस मौके पर लैंड माइन्स हैं, खनन गतिविधियां हैं और खदान में काम करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जाता है.
Yes, Athar, and as we always have been saying this, that these observance of special days are specially done to make people aware of these problems and hazardous situation and take action regarding that. And the significance of International Mine Awareness is that more than 61 countries are still at risk of landmine contamination. Millions of people around the world are impacted by the effects of landmines, including injuries, deaths, and social and economic upheaval as well. So the use of landmines has been linked to increased gender and maternal mortality, as well as reduced productivity and economic growth.
सुरंगों की हम बात कर रहे हैं, खदानों की बात कर रहे हैं, खानों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, आपको याद होगा.
बिल्कुल,
41 मजदूर उसमें फंसे थे और एक लंबा संघर्ष किया था उनको निकालने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए. उसके लिए बहुत सारे विशेषज्ञ बाहर से भी आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, लेकिन सफलता मिली थी उन मजदूरों को निकालने की. रेड माइनर्स को, जो कि उन्होंने हाथों के जरिए, फावड़ों के जरिए और एक रिस्क लेते हुए इस खूबसूरती के साथ उन्हें 41 प्राणों की रक्षा की थी, तो उनको हम इस मौके पर जरूर याद करेंगे, क्योंकि ये खान सुरक्षा जागरूकता का विषय है. और हमारे देश की अगर हम बात करें तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि में हमारी बहुत सारी खनिज पदार्थों की और कोयले की खाने हैं, तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए, साथ ही साथ मेट्रो के लिए भी सुरंगों का, और उसमें खासतौर पर मेट्रो सिटीज में
देयर आर मेनी डेवलपमेंटल वर्क्स आल्सो असाइंड टू दीज माइनर्स एंड माइन वर्किंग्स,
बिल्कुल,
बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस,
बिल्कुल। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। अनुजा,
Yes, the Border Security Force has organized an art and craft exhibition at the Ashwini BSF Officers Institute in New Delhi. The exhibition will be held till the 5th of April and is open to the public. It will commence at 11 a.m. every day, followed by a music show at around 6 p.m. We have a report on this.
Over 115 BSF personnel and their families have gathered to display their artistic prowess here. The exhibition showcases a diverse array of artistic expressions, from vibrant paintings to intricately carved wood statues, from graceful stone sculptures to delicate clay and bamboo art. But the heart of the exhibition lies in the stories behind the art. Deepa Dhima, a daughter of late BSF constable from Haryana, shares a poignant message through her artwork, reminding us of the sacrifices made for our नेशन सेफ्टी।
मेरे फादर बीएसएफ में हैं, तो उस चीज को मैंने देखा है, मतलब डैडी को देखा है, मम्मी को देखा है। जैसे डैडी छुट्टी आते थे और मतलब बहुत कम टाइम मिलता है फौजी लाइफ में कि अपने फैमिली के पास टाइम बिताने के लिए, तो उस टाइम को जब जाने का टाइम होता था छुट्टी के बाद, तो वो जो मेमोरी रह जाती थी, वो लम्हे जो उनके याद वाले रह जाते थे, तो उसमें पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि जो वुमेन है वो मिरर में देखते हुए खुद को संवारते हुए मतलब उन लम्हों को याद कर रही है।
BSF Constable Uttam Singh, hailing from Himachal Pradesh, showcased his skillful woodcraft creations. He enthralled the audience with his musical talents by playing a flute that he had crafted from wood. As twilight descends, the atmosphere transforms into a musical evening, where melodies weave through the air, setting the stage for heartfelt performances by Seema Prahoris. This is Pallavi Parmar for Parikrama Delhi.
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो वहां 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए व्यापक तैयारियां हो गई हैं। इस बार के चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट सुन लेते हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस बार के चुनाव में 3,15,148 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दक्षिण अंडमान जिले में सबसे अधिक 2,10,139 मतदाता हैं। कार निकोबार क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,288 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,348 है। द्वीप समूह में इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए भी कई स्वीप गतिविधियां आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सुदूर ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले शोम्पेन आदिम जनजातियों के लिए भी 2 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और मतदाताओं को ईवीएम के इस्तेमाल के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया है। यदि शोम्पेन आदिम जनजाति अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 2014 के बाद से शोम्पेन आदिम जनजातियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं और इन्हें भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस बार के चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित 4 राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार हैं। जबकि 3 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं। इस बार के चुनाव में 2 महिलाएं सहित 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जबकि अन्य पार्टियों की ओर से फिलहाल प्रचार अभियान ही किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच पड़ताल का कार्य भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न हो, इस पर भी नजर रखी जा रही है। आने वाले समय में चुनाव प्रचार और तेज होगा। भाजपा की शीर्ष नेतृत्व की ओर से कुछ नेताओं को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पार्टी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए भी नियुक्त किया गया है। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल।
And as the country is heading towards general election 2024, authorities are coming up with various new ways of ensuring voters' participation in the biggest event of democracy. Of course, Athar, it gives legitimacy to the government when voters come out and vote. In Thrissur, in Kerala, robots are being used as part of the sweep program to spread voter education, awareness and voter literacy. A report.
In Kerala, the Thrissur district administration is setting a futuristic tone for the Lok Sabha election campaign with robots. Launched by the Chief Electoral Officer of Kerala, Sanjay Kaul, this innovative initiative employs robots for voter awareness campaigns, aiming to boost voter participation and awareness. Robots are utilized at prominent malls and other places to promote awareness among voters and to encourage them to cast their votes. Various awareness videos are also being screened using the robots. There is also the opportunity to take a selfie with the robot. This initiative is attracting people and is a fine example of usage of technology in communicating and creating awareness of citizen rights. Mayusha for Parikrama from Tiruvananthapuram.
और अनुजा चलते हैं पंजाब। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 1 जून को होना है और इसके लिए अधिसूचना 5 मई को जारी की जाएगी। ऐसे में राज्य में अभी तक केवल चुनाव कार्यालय की सक्रियता ही नजर आ रही है, जबकि राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम पर गहनता से विचार में जुटे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी के अनुसार नए मतदाताओं के पास 4 मई तक अपना वोट बनाने के अवसर मौजूद हैं। इसी विषय पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिशु शर्मा शांतर।
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए लक्ष्य रखा है इस बार 70 पार। इस लक्ष्य के अनुरूप ही पंजाब में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के मार्गदर्शन में सभी 23 जिलों के चुनाव अधिकारी व चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारी दिन रात एक कर रहे हैं। विशेष रूप से स्वीप गतिविधियों के तहत स्कूलों व कॉलेजों में अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर युवा मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें वोट के महत्व से अवगत करवाकर मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक और नुक्कड़ सभाओं का सहारा भी लिया जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी के अनुसार नए मतदाताओं के पास 4 मई तक अपना वोट बनवाने का अवसर मौजूद है और हर पात्र व्यक्ति को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
वोटिंग परसेंटेज इस बार इंक्रीज करने के लिए हमारी सारी कोशिश है। स्वीप एक्टिविटी सारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं तो हमारी नारा है 70 तो ऊपर वोटिंग परसेंटेज इस बार अचीव किया जाए, तो इस बार 70 पार का नारा है। तो हम इसमें ये याद कर रहे हैं कि ये पूरा कोशिश हमारी सफल रहेगी। यूथ वोटर्स के लिए हमने उनको इंस्पायर करने के लिए काफी कोशिश किया है और हमारी आइकॉन्स जो है मिनिस्टर शुभमान गहलोत और संजय सरन को एंगेज किया। तो हमारी कोशिश यही है कि लोगों को वोटिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा आके वोट करें। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशन है उसकी वॉलंटियर्स है वहां पे लगाएंगे, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। वोट अभी तक 10 डेज बिफोर लास्ट डे नॉमिनेशन तक बना सकते हैं, इसका मतलब है कि वो 4 मई तक बना पाएगा। कि यही रिक्वेस्ट है जिनकी वोट नहीं बनी है वो वोट बनाए, वो जिनकी वोट बन चुके हैं वो 1 जून को वोटिंग है हमारी वहां आके वोट करें।
1 जून को मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर भी मतदाताओं के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव कार्यालय के समक्ष एक बड़ी चुनौती मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार गर्मी के तेवर इस बार पहले की तुलना में कुछ अधिक ही गर्म रहने वाले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग के कदमों से इस बार 70 पार का ये लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतम।
And in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present to you a capsule based on state profile giving details of the number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. In this series, let's go to the Bastar Lok Sabha constituency of Chhattisgarh today.
द बस्तर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन छत्तीसगढ़ इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. द नंबर ऑफ वोटर्स इज अ लिटिल मोर देन 14,72,000. द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स सरपासेज दैट ऑफ मेल्स इन दिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7,71,000 फीमेल वोटर्स वाइल मेल वोटर्स अमाउंट टू रफली 7 लाख. Comprising 8 assembly constituencies, the Bastar Lok Sabha constituency witnesses the participation of 11 candidates in the electoral race. The Bharatiya Janata Party has fielded Mahesh Kashyap, while Congress has nominated former Minister and Sukma MLA Kawasi Lakhma. In the last Lok Sabha election, Deepak Baij of the Congress emerged victorious from the Bastar Lok Sabha seat. The Bastar region grapples with challenges posed by left-wing extremism. The Election Commission of India is diligently ensuring fair and peaceful conduct of the Lok Sabha elections through various measures. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
And moving on, we next take you to Maharashtra, where the Eastern Vidarbh will go to polls on the 19th of this month. Nagpur, which is the sub-capital of the state, is also gearing up for this electoral exercise. We have more from there, from our correspondent.
Senior BJP leader and Union Minister Nitin Gadkari will try to seek the consecutive third term as MP in the lower house of parliament from Nagpur Lok Sabha constituency. He faces the main contest from the Congress party candidate and sitting MLA from West Nagpur, Vikas Thackeray. Nagpur constituency comprises of 6 assembly constituencies, which include Nagpur Southwest, Nagpur South, Nagpur Central, Nagpur West and Nagpur North. The Nagpur Lok Sabha constituency also includes the assembly constituency of the present Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis from the BJP. Nagpur city has over 22 lakh voters, which includes over 11 lakh male voters and 11 lakh female voters. The city also has over 200 transgender voters. The district election machinery has planned over 2,000 polling booths, of which 12 polling booths will be exclusively operated by women. Dhananjay Vankhede, Akashwani News, Nagpur.
And now it's time to take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 4th of April 1914, the Japanese steamship Komakata Maru sailed from Hong Kong to Vancouver in British Columbia, Canada. Komakata Maru incident is infamous as it was one of the several incidents in the early 20th century in which exclusion laws in Canada and the United States were used to exclude immigrants of Asian origin.
Komakata Maru was carrying 376 passengers from Punjab province in British India. On reaching Vancouver on the 23rd of May 1914, they were refused entry into Canada under the Immigration Act of 1910. It was forced to start the return journey of its Indian passengers on the 23rd of July. The ship and passengers arrived at Bajbaj near Calcutta on the 29th of September 1914. But in Calcutta too, they were prevented from disembarking by the British administration.
Upon entry into the harbour, Komakata Maru was stopped by the British gunboat and the passengers were placed under guard. The government of the British Raj saw the men on Komakata Maru as dangerous political agitators. The British government suspected that nationalists were using the incident to instill patriotic feeling. Baba Gurdit Singh, who had originally hired the ship, wanted to walk into Calcutta and meet the governor, as well as to take the Granth Sahib to Gurdwara in Howrah.
This resulted in a heated argument between the police and Gurdit Singh. A rumor spread that Gurdit Singh was being arrested. This resulted in anguish, leading to a fight in which the policemen fired about 177 rounds, killing 26 people and forcing many to flee. Many people were arrested and imprisoned or sent to their villages and kept under village arrest for the duration of the First World War.
In the wake of the incident, prominent Ghadarites including Barkatullah, Taraknath Das and Sohan Singh used the incident as a rallying point to recruit members for the Ghadar movement. In 1952, Prime Minister Jawaharlal Nehru inaugurated a memorial to the Komagata Maru martyrs near the Bajbaj, West Bengal. We salute the great martyrs.
We also remember freedom fighter Jayadayal Bhatnagar, who was born on the 4th of April 1812 in erstwhile Bharatpur State, now in Rajasthan. Along with Mehrab Khan, Jayadayal organized and led the first war of Indian independence against the Kota ruler and the British in Kota in 1857. He directed the military operations against the British and was involved in provoking the independence activists to attack the Agency House in Kota on the 15th of October 1857.
Following the siege of Kota, Jayadayal and Mehrab Khan took over the charge of administration of Kota State for several months. However, after the defeat of the independence activists in March 1858, Jayadayal went into hiding. Jayadayal was betrayed by an informer and was arrested on the 15th of April 1860. Jayadayal was sentenced to death and executed by hanging near the Agency House in Kota on the 17th of September 1860. We salute the great freedom fighter.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हरा दिया। विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। ये आईपीएल के इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। सुनील नरेन ने 39 गेंद पर 85 और अंग कृष्ण रघुवंशी ने 27 गेंद पर 54 रन की आक्रामक पारियां खेली। दिल्ली की टीम 17 ओवर 2 गेंद में 166 रन ही बना सकी। टेबल टेनिस में डब्ल्यूटीटी फीडर वरजदीन 2024 टूर्नामेंट आज से क्रोएशिया में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में साथियान ज्ञान शेखरन और मनिका बत्रा जैसे प्रमुख खिलाड़ी भाग लेंगे।
And coming to the business news, key domestic indices ended higher today, supported by gains in private banking and technology stocks. BSE Sensex rose 351 points or 0.47% to close at 74,228, while Nifty 50 added 80 points or 0.36% to settle at 22,550. And now coming to our last segment of paying tributes to some great personalities, we start with the death anniversary of Sachidanand Hiranand Vatsyayan Aghe, who was a leading Indian poet, novelist and journalist of Hindi literature. Like T.S. Eliot in English literature, he himself was a great institution that gave rise to a number of new thoughts and visions in both criticism and creation. He won many literary awards and honours, including Sahitya Academy, Gyanpeeth, Bharat Bharati and Golden Reed Awards.
आज ही पुण्यतिथि है शशिकला की। वे हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। हिंदी सिनेमा की खलनायिकाओं का जिक्र होते ही जहन में उभरने वाला पहला नाम शशिकला का आता है। उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उनके द्वारा खास अभिनीत फिल्में थी 9-2-11, जंगली, हरियाली और रास्ता, ये रास्ते हैं प्यार के, गुमराह, हिमालय की गोद में, फूल और पत्थर, घर घर की कहानी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए और सरगम जैसी कई सारी कहानियां हैं। उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया संवाद, उसको सुन लेते हैं हम।
जी क्या हुआ? शांति नहीं है?
मैं खुद उसे यहाँ नहीं लाया।
क्यों?
उसे यहाँ लाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
क्या सवाल?
जिस दिन लोग घर छोड़कर चले गए थे, उसकी पहली रात शांति को दूध किसने दिया था?
दूध? क्या मतलब तुमसे सवाल?
मैं तुमसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। शांति को दूध तुमने दिया था?
अचानक तुम्हें क्या हो गया? मेरे सामने तो बात कर रहा है।
मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा खरीद हुआ गुलाम नहीं, तुम्हारा पति हूँ।
तुमने मुझ पर हाथ उठाया,
ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था।
और बात जन्म दिवस की, तो पहले जिस व्यक्तित्व को हम करेंगे याद, उनकी चंद पंक्तियां गुनगुनाना चाहता हूँ। कहता हूँ कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि का शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर आने। जी हाँ, आज जन्म दिवस है माखनलाल चतुर्वेदी का। वे सरल भाषा और रोजपूर्व भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे।
Yes, he was awarded the first Sahitya Academy Award in Hindi for his work Hind Tarangini in 1955, and the Government of India awarded him the civilian honour of the Padma Bhushan in 1963 for his works reinforcing Indian nationalism during the British Raj. He is always referred to as the Yug Charan.
आज ही जन्म दिवस से जानी मानी अभिनेत्री परवीन बॉबी का, जिनकी खास फिल्मों की बात करें तो दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, नमक हलाल आदि उनकी प्रमुख फिल्में रही हैं। और अब समय है आपसे अनुमति लेने का। अनुमति दीजिए अतहर सईद और अनुजा कुमार को। नमस्कार,
नमस्कार।